नमस्कार भारत, आज है 16 सितंबर दिन शनिवार। स्वीकार कीजिए कुलदीप मिश्र का नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र की आपात बैठक में उत्तर कोरिया की कड़ी निंदा, लेकिन किम जोंग उन बोले परमाणु कार्यक्रम पूरा करके रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम कीमत, फिर भी भारत में आसमान छू रहे हैं पेट्रोल के दाम, सरकार क्यों नहीं दे पा रही राहत?
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत कम हो गया, इसका 75-80% फायदा भारत सरकार अपने आप के पास रख दिया।
और विवेचना में आज सुनिएगा भारत और चीन के बीच उस कम जानी हुई झड़प की कहानी जिसमें मारे गए थे 300 चीनी सैनिक।
तो चाइनीज ने कहा कि भाई आप लोगों ने अटैक किया है, और एक तरह से उनकी बात सही थी। हमारी सारी बॉडीज चाइना में पाई गई, क्योंकि हमने।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार संदीप राय से। जापान की ओर दोबारा मिसाइल छोड़ने पर उठे विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया की कड़ी निंदा की है। शुक्रवार को मिसाइल लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया और जापान की अपील पर बुलाई गई परिषद की आपात मीटिंग में उत्तर कोरिया को उकसावे वाली कार्रवाई करने से बाज आने को कहा गया है। हालांकि उस पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस मीटिंग से पहले अमरीका, चीन और रूस के बीच तीखे मतभेद पैदा हो गए थे। इराक के स्वायत्त शासी कुर्दिस इलाके की संसद में इराक से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। प्रस्ताव में 10 दिनों के अंदर चुनाव कराए जाने की बात कही गई है। इराकी सरकार कुर्दों के अलग हो जाने के खिलाफ है। उधर अमेरिका ने भी संसद से अपनी इस योजना को रद्द करने की अपील की है। वाशिंगटन ने चेतावनी दी है कि जनमत संग्रह से इराक में इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई पर असर पड़ेगा, जबकि इराक की केंद्र सरकार ने इसे गैर संवैधानिक बताया है। लंदन के ट्यूब ट्रेन बम विस्फोट के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने देश में चरमपंथी हमलों के खतरे को उच्च स्तर का घोषित किया है। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। मे ने कहा है कि सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि आगे भी इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर पुलिस की जगह सेना के जवान तैनात किए जाएंगे।
I've just been updated on the investigation into this morning's cowardly terrorist attack in London.
लंदन में चरमपंथी हमले की जांच के बारे में मैंने ताज़ा सूचनाएं दे दी हैं। मामले की जांच पुलिस और सुरक्षा अधिकारी कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि चरमपंथी हमले के खतरे के स्तर को बढ़ाने पर विचार हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि और हमले हो सकते हैं, इसलिए पुलिस से कहा गया है कि वो रक्षा विभाग से तालमेल कायम करके आगे काम करें। ये थे टेरेसा मे के शब्द। स्पेन के प्रधानमंत्री मारियानो राजियो ने बार्सिलोना में अपने पार्टी समर्थकों से कहा है कि अलग होने के मसले पर कैटालोनिया में जनमत संग्रह नहीं कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर कैटालोनिया का प्रशासन 48 घंटे में कानूनी समझौता नहीं करता है, तो केंद्रीय सरकार अगले हफ्ते क्षेत्रीय सरकार के फंड को रोक देगी।
Amigas y amigos, lo digo con la misma serenidad.
अगर अब से 48 घंटे में कानून के तहत समझौता नहीं होता है, तो उसके बाद स्पेन की सरकार कैटलोनिया के सरकारी फंड की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लेगी। ये थे प्रधानमंत्री मारियानो राजोए के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। फ्रांसीसी पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने दो महिलाओं पर हथौड़े से हमला किया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि संदिग्ध हमले के दौरान अल्लाहू अकबर चिल्लाया था। अधिकारी इसे चरमपंथी हमला मान रहे हैं। महिलाओं को गंभीर चोट नहीं लगी है और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। नाइजीरिया की सेना ने अलगाववादी संगठन इंडिजिनस पीपल ऑफ बायफ्रा को चरमपंथी संगठन घोषित कर दिया है। सेना ने कहा है कि बायफ्रा ने सीक्रेट सर्विस स्थापित कर ली है और उनके पास हथियार हैं। उन्होंने सेना पर भी हमले किए हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश गिनी में बॉक्साइट खनन को लेकर पिछले 5 दिनों में प्रदर्शन हो रहा है। बॉक्साइट का इस्तेमाल एल्युमिनियम बनाने में किया जाता है। स्थानीय खबरों के अनुसार बोके में 2 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं, जबकि 80 से ज़्यादा घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इलाके की खनिज संपदा से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला है। वाशिंगटन में वेटिकन के दूतावास में काम करने वाले एक पादरी को वापस बुला लिया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि पादरी ने बच्चों से संबंधित यौन उत्पीड़न की तस्वीरों के मामले में कानून का उल्लंघन किया है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर भी लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। ताजा मिसाइल परीक्षण पर चौतरफा निंदा के बाद भी उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने देश के परमाणु कार्यक्रम को पूरा करने की बात दोहराई है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन ने कहा है कि उनका मकसद अमरीकी फौज के मुकाबले अपना संतुलन बनाना है। उधर उत्तर कोरिया के यूरोप में सांस्कृतिक संबंधों के विशेष प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रो काओ डिमोनो ने कहा है कि उत्तर कोरिया अमरीका के किसी भी शहर तक पहुँच सकता है। BBC रेडियो 5 के स्टीफन नोलन से बात करते हुए उन्होंने कहा, हम दिखा चुके हैं कि हमारे पास ऐसी मिसाइलें हैं जो 3,000 से 4,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती हैं, और सारे अमरीकी वैज्ञानिक ये बात समझ चुके हैं कि अगर हम अपनी मिसाइलें कम कोण पर लॉन्च करें तो अमरीका के लगभग हर शहर तक पहुंच सकते हैं, और हम दिखा चुके हैं कि हमारे पास परमाणु ताकत भी है। जब BBC के स्टीफन ने उनसे कहा कि आप अमरीका के हर शहर तक नहीं पहुँच सकते, ये बात गलत है, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा,
I said to you, we have already demonstrated that.
मैं आपसे कह चुका हूं कि हम ये करके दिखा चुके हैं, सिर्फ अभी नहीं, ऐसी मिसाइलें जिनकी पहुंच 10,000 से 11,000 किलोमीटर तक है, हम उन्हें दिखा चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि खेल अब खत्म हो चुका है, हालांकि वो टीवी पर और दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते हैं कि वो मजबूत नेता हैं और जो अमरीका को दोबारा महान बनाएंगे। ये थे उत्तर कोरिया के यूरोप में सांस्कृतिक संबंधों के विशेष प्रतिनिधि अलेक्जेंड्रो काओ डिबेनो। श्रोताओं, आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया ने एक बार फिर जापान के ऊपर से एक मिसाइल छोड़ी थी। इसके बाद अब से कुछ घंटे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक हुई। इसमें उत्तर कोरिया पर नई पाबंदियों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन इस मिसाइल परीक्षण की कड़ी निंदा करते हुए इसे बड़ा उकसावा बताया गया। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रहे हैं संदीप राय।
उत्तर कोरिया के हालिया मिसाइल परीक्षण को उकसाए वाली कार्रवाई बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसकी कड़ी निंदा की है। गुरुवार को उत्तर कोरिया ने जापान की ओर अपनी अब तक की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया था। इसके बाद सुरक्षा परिषद की बुलाई गई आपात मीटिंग में प्योंगयांग से इस तरह की कार्रवाई को तत्काल रोकने को कहा गया। बयान में सदस्य देशों से प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने को कहा गया है। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष टेकेडा एलमो ने कहा, परिषद डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की उकसावे वाली कार्रवाई की निंदा करती है। सभी सदस्य देश पूरी तरह और तत्काल परिषद के प्रस्तावों को लागू करें। परिषद इस जरूरत पर भी जोर देती है कि कोरिया परमाणु निःशस्त्रीकरण की प्रतिबद्धता के प्रति ठोस कार्रवाई के जरिए गंभीरता दिखाए और कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को कम करने के लिए काम करे। ये थे टेकेडा एलमो के शब्द। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी राजदूत निकी हेली ने कहा है कि अगर कड़ी आर्थिक पाबंदियां कारगर नहीं होती हैं तो वाशिंगटन के पास सैन्य कार्रवाई के और विकल्प भी मौजूद हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में रूसी राजदूत वैसिली नेबेंजिया ने कहा कि कूटनीति ही इस संकट का एकमात्र हल है।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक दैट थ्रेट्स टेस्ट्स लॉन्चेस एंड म्यूचुअल थ्रेट्स इन फैक्ट शुड बी स्टॉप्ड।
सबसे पहले तो हम समझते हैं कि धमकियां, परीक्षण, मिसाइल लॉन्च और एक दूसरे को धमकियां देना बंद होना चाहिए। हमें नतीजे देने वाली बातचीत में शामिल होना चाहिए। मेरे हिसाब से सभी लोग इस बात को समझते हैं कि अंत में इसका दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। ये थे वैसिली नेबेंजिया के शब्द। मीटिंग से पहले अमरीका और चीन और रूस के बीच इस मुद्दे पर तब विवाद पैदा हो गया था जब अमरीका ने इसकी सारी जिम्मेदारी रूस और चीन पर डाल दी थी। अमरीका ने कहा था कि उत्तर कोरिया को समझाने की पूरी जिम्मेदारी उसके करीबी सहयोगी देश चीन और रूस पर है। उधर रूस ने भी अमरीका की उकसाऊ बयानबाजी की निंदा की है। अभी हाल ही में परिषद ने उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों को और कड़ा करने का फैसला किया था, लेकिन ताजा बयान में और पाबंदियों का जिक्र नहीं किया गया है।
उत्तर कोरिया मसले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का ब्यौरा सुन रहे थे आप संदीप राय से। अब बात बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की। म्यांमार में सेना की कथित हिंसा के बाद जान बचाकर लाखों की संख्या में रोहिंग्या मुसलमानों ने बांग्लादेश में शरण ली है। BBC बांग्ला की संवाददाता फरहाना परवीन के मुताबिक बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के एक शिविर में कई ऐसी महिलाएं सामने आई हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि म्यांमार की सेना मर्दों को कत्ल कर रही थी और औरतों से बलात्कार कर रही थी। अभी आपको बीते कुछ दिनों की तरह शरणार्थी शिविर का हाल सुनाते हैं। हमारी संवाददाता प्रतीक्षा घिल्डियाल बांग्लादेश में मौजूद हैं और उन्होंने कॉक्सस बाजार के पास कुटापलोंग में एक शरणार्थी शिविर में कुछ महिलाओं से बात की। सुनिए।
आज भी हम एक कैंप में गए थे जो कि कॉक्सस बाजार एरिया में ही है और वहाँ हम एक महिलाओं के एक ग्रुप से मिले जिन्होंने हमें बहुत ही दिल दहलाने वाली कहानियां बताई। एक महिला थी तोयोबा बेगम जिन्होंने हमें बताया कि उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी म्यांमार में और इसलिए उनको वहां से भागना पड़ा। उनका कहना है, उनका दावा है कि ये हार्डलाइन बुद्धिस्ट थे वहां के जिन्होंने ये हत्याएं की और इनके साथ और भी बहुत सारी महिलाएं थी जिनकी सारी कहानियां जो हैं मिलती जुलती हैं कि उनको डर के मारे भागना पड़ा क्योंकि उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा, लोगों की हत्या होते हुए देखा। एक महिला थी नशीमा खातून जिनको खुद भी नहीं पता चला कि उनका परिवार कहाँ है और उनको गांव वालों ने बताया कि उनमें से कई लोगों की हत्या हो चुकी है तो अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो भाग जाओ, तो वो भाग के फिर म्यांमार से बांग्लादेश की तरफ आई। चाहे वो एग्जैजरेट करके बोल रहे हैं या जैसे भी बोल रहे हैं लेकिन कुछ तो बहुत भयानक हुआ है कि वो इतनी तादाद में लोग भागे हैं और इस तरह के कंडीशंस में रोड की तरफ रह रहे हैं। कुछ चीजें जो मेरे जहन में घर कर गई वो एक तो ये कि बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा है और बच्चों से मेरा मतलब केवल ये नहीं है 7-8-9-10 साल, बच्चों से मतलब जो शायद 1 महीने के हैं, 2 महीने के हैं, 4 महीने के हैं। आज चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई थी तो मैंने देखा कि माएं अपने बच्चों को छतरी के नीचे छुपा के रख रही थी या फिर उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल रही थी ताकि उसको धूप ना लगे। लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, 4 लाख तो बताई जा रहे हैं कि वो आ चुके हैं और इतने ही अनुमान है कि करीब इतने ही लोग दूसरी तरफ इंतजार कर रहे हैं इस तरफ पलायन करने का। इसकी तैयारी जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर होनी जरूरी है जो कि धीरे धीरे हो रही है पर अभी भी बहुत स्कोप है इसमें।
रोहिंग्या शरणार्थी शिविर की आंखों देखी बता रही थी प्रतीक्षा घिल्डियाल। अब बात भारत की, जहां इन दिनों चर्चा है पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सस्ती कीमतों के बावजूद भारत में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं क्योंकि सरकार उस पर शुल्क कहीं ज़्यादा ले रही है। भारत में पेट्रोल के दाम फिलवक्त अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश से भी ज़्यादा हैं। जब बोझ आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है तो सरकार उत्पाद और सीमा शुल्क घटा कर इसे हल्का क्यों नहीं कर रही है? हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता से बात की तो यही पूछा कि आखिर पेच कहां फंस रहा है।
आज पेट्रोल और डीजल का कीमत 3 साल पहले जहां थे वहां पे आ गया, मगर इस 3 साल में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत आधा हो गया। जून 2014 में कच्चे तेल का कीमत लगभग $115 हर बैरल, वो आज घट के 50 के आसपास है। तो आज भारतवर्ष 80% कच्चे तेल विदेश से आयात करता है। ये जो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी ये वित्त मंत्रालय बढ़ाया और बढ़ा के ये राजस्व सरकार के पास आ रहा है। अर्थशास्त्री लोग ने ये अनुमान किया कि पिछले 3 साल में बहुत कम से 5 लाख करोड़ यानी कि भारतवर्ष का जीडीपी का 3% के आसपास ये पैसा सरकार के पास आ गया क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का कीमत कम हो गया। इसका 75-80% फायदा भारत सरकार अपने आप के पास रख दिया और उपभोक्ताओं को 25% मिला। जब डीजल का कीमत बढ़ जाता है तो यातायात का खर्चा बढ़ जाता है, इसका असर पड़ता है मुद्रास्फीति के ऊपर। हर चीज जो एक जगह से दूसरे जगह लोग ले जाते हैं, अनाज हो सकता है, सब्जी हो सकता है, फल हो सकता है, सारे कीमत बढ़ना शुरू कर देते हैं। और आप देख रहे हैं ये जो मुद्रास्फीति के ऊपर जो अंकुश था पिछले 3 साल में फिर बढ़ना शुरू कर।
सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उसके अंदर में क्या चल रहा है जिसकी वजह से? क्योंकि
ये सवाल आप वित्त मंत्री से पूछिए, प्रधानमंत्री से पूछिए, जिस रफ्तार से हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहे थे वो रफ्तार, वो गति कम हो गया था। सरकार ने बहुत कुछ वादा किया था कि नौकरी आएगा, नौकरी बनेगा, मगर अभी तक तो कोई नहीं देख रहे कि नौकरी कहाँ आ रहे। निजी क्षेत्र, निजी कंपनी निवेश नहीं कर रहे, बैंकों के पास जो पैसा है ये भी ऋण देने के लिए तैयार नहीं है। और एक और चीज है जो अर्थव्यवस्था के ऊपर, जो नोटबंदी का जो धक्का लगा और जीएसटी इन्होंने लागू किया, मगर एक तरह से अनिश्चितता चल रहा है, सारे मिलके आज भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था 3 साल पहले जहां था उससे खराब हो गया।
लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उनका 13 सितंबर को एक ट्वीट है कि 68 देश हैं, जापान, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, फ्रांस, कि वहाँ तो पेट्रोल महंगा है।
सर वो विकसित देश है, हम लोग विकासशील देश है। आप उनकी अर्थव्यवस्था और हमारे अर्थव्यवस्था के साथ तुलना हमें नहीं करना चाहिए। अगर जापान में डीजल पेट्रोल का कीमत ज्यादा है, जापान का जो हर व्यक्ति का जो आय है वो भी तुलना कीजिए, भारतवर्ष का जो है उसका 10 गुना है। तो ठीक है, आप बात कर रहे हैं लोग कर दे दो, आयकर विभाग का भय दिखा रहे हैं लोगों को, मगर असलियत क्या है? आप राजस्व नहीं भर रहे, इसीलिए आप तेल से पैसे ले रहे, और कोई रास्ता नहीं है। आप
वरिष्ठ पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता। अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का। संदीप राय मेरे साथ स्टूडियो में प्रमुख अखबारों के साथ मौजूद हैं। संदीप, क्या कहते हैं आज के अखबार?
जी कुलदीप, आज के प्रमुख अखबारों में जापान के ऊपर से छोड़ी गई उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा में स्कूली बच्चे की हत्या के मामले में सीबीआई के हवाले, इस मामले की जांच को सीबीआई के हवाले करने की खबर भी कुछ अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर ली है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर छापी है जिसके अनुसार बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रांची में पार्टी के कार्यक्रम में कहा है कि कांग्रेस अपने नेताओं की अस्थियां लेकर ढो रही है। उन्होंने कांग्रेस पर व्यंग कसते हुए कहा कि इस पार्टी में केवल एक परिवार केंद्र में है। उधर हिंदुस्तान टाइम्स ने कृषि उत्पादन को लेकर एक खबर छापी है जिसमें कहा गया है कि इस बार अनाज उत्पादन के प्रमुख इलाकों में औसत से कम बारिश हुई है जिससे उत्पादन में भारी गिरावट आने के आसार हैं। अमर उजाला की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार पैन कार्ड को आधार से जोड़ने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इसकी सूचना केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी है। कोलकाता से निकलने वाले अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ की एक खबर है जिसमें कहा गया है कि असम विधानसभा ने एक ऐसा विधेयक पास किया है जिसके तहत अगर कोई अपने माँ बाप की देखभाल नहीं करता है तो उसके वेतन से कटौती कर संबंधित लोगों को उसका हिस्सा दे दिया जाएगा, यानी माँ बाप को जिनकी वो देख रेख नहीं कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है जिसमें मथुरा का जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बरसाना का, उसमें राधा रानी टेम्पल, उसमें एक गैंगरेप की खबर है।
बहुत शुक्रिया संदीप राय अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब वक्त है साप्ताहिक विवेचना का। पिछले दिनों डोकलाम पर 2.5 महीनों तक गतिरोध चला और इस दौरान चीन के सरकारी मीडिया ने बार बार भारत को बताया कि वो ये न भूले कि 1962 के युद्ध में चीनी सैनिकों के सामने उसकी क्या गत हुई थी, लेकिन चीन की तरफ से कभी 1967 में नाथुला में हुई उस झड़प का जिक्र नहीं किया गया जब चीन के 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। क्या था पूरा मामला, बता रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
आज कल की खबरें आई थी, वहाँ पूर्वी सीमा प्रांत में वालोंग एक जगह है, उसको हमारी फौज को छोड़ना पड़ा। सीला एक पास है, पहाड़ है बोंडीला के ऊपर, तवांग और बोंडीला के बीच में, और बोंडीला भी हमारे हाथ से निकल गया।
1962 में चीन से हार के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संबोधन, लेकिन 5 वर्ष बीतते भारत चीन सीमा पर हालात इस हद तक पलट गए थे कि भारतीय सैनिक चीनियों को न सिर्फ कड़ी टक्कर दे रहे थे बल्कि उन पर भारी भी पड़ रहे थे। लेकिन दोनों देशों के कूटनीतिक संबंधों में तनाव में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि दोनों देश एक दूसरे पर हावी होने का कोई मौका नहीं चूक रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के सह संपादक सुशांत सिंह बताते हैं।
1962 के बाद भारत और चीन ने अपने अपने जो अम्बेसडर होते हैं उनको वापस बुला लिया था एक दूसरे के देशों से, पर एक छोटे छोटे मिशन दोनों जगह पर उस वक्त भी चालू थे। भारतीय मिशन जो पिकिंग में था वहां पर किसी पर एस्पिनाज का आरोप लगाया गया, बोला गया कि भाई ये जासूसी कर रहे हैं चीन के खिलाफ, और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और उसके बाद उनको एक्सपेल किया गया। और उसी वक्त पूरे भारतीय दूतावास को चीनी पुलिस ने, चीनी सैनिकों ने घेर लिया और किसी व्यक्ति को वहां नहीं जाने दिया। उसके बदले में भारत ने भी दिल्ली में चीनी दूतावास को उसी तरह से घेर लिया। ये कार्रवाई करीब जून जुलाई में चालू हुई और अगस्त 3 अगस्त को जाके दोनों साइड से बात हुई कि भाई अपनी अपना आप ये घेराबंदी तोड़ दें, और 3 अगस्त को वो घेराबंदी खत्म हो गई।
ये बात है 1967 की, लेकिन इससे पहले 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई शुरू हुई तो अयूब खां चीन की मदद लेने के लिए गुप्त रूप से चीन पहुंचे और उन्होंने चीन से अनुरोध किया कि पाकिस्तान पर दबाव हटाने के लिए भारत पर सैनिक दबाव बनाया जाए। लीडरशिप इन इंडियन आर्मी के लेखक मेजर जनरल वी के सिंह बताते हैं।
इत्तेफाक से मैं उस समय वहीं पोस्टेड था, सिक्किम में ही, सिग्नल रेजिमेंट में। इसके पहले क्या हुआ, 1965 में पाकिस्तान को एक तरह से मदद करने के लिए चाइना ने अल्टीमेटम दे दिया कि नथुला जो है आप वकेट करिए, खाली करिए, और बगल में जलेपला भी एक पास है उसको भी खाली करिए, क्योंकि जो मेन डिफेंसेस थे उस टाइम छंगू में थे हमारे, कोर हेडक्वार्टर में से इनको बोला गया आप खाली कर दीजिए। जनरल बेवूर जियो सिंह थे तब, तो जनरल सगत ने बोला भाई इसको खाली करना बहुत बेवकूफ़ी होगी, ये वाटरशेड पे है, जो मैकमोहन लाइन जिसको इंडिया क्लेम करती है हमारा बॉर्डर है, ये नथुला उसके ऊपर है, वहाँ पे जो भी रहता है उसको चाइनीज टेरिटरी में ऑब्जर्वेशन है, फायर है, उसको डोमिनेट कर सकता है, हम उनको दे देंगे तो हम उनको डोमिनेट करने के बजाय वो हमारे ऊपर डोमिनेट करेंगे, हमारे ऊपर फायर डाल सकेंगे वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने बोला भाई आपके जो लिखित आदेश हैं ऑफ इंस्ट्रक्शन उसमें ये है कि नथुला को खाली करना, हालांकि ऑब्जर्वेशन पोस्ट मानी जाती थी, ये डिविजनल कमांडर का डिस्क्रिप्शन है, तो मैं नहीं करूँगा, आपके ऑर्डर हैं, ये मैं डिसाइड करूंगा कि कब खाली करना है। ही रिफ्यूज्ड, जलपला खाली कर दिया, चाइनीज ने ऑक्यूपाइड कर दिया, उनकी वजह से नथुला अभी भी हमारे पास है। उसके बाद चाइनीज फायरिंग मारिंग शुरू करते, हमारी तरफ से भी हुई, तो काफ़ी गर्मा गर्मी हुई थी, चाइनीज बहुत इससे अनहैप्पी थे, बहुत प्रेशराइज कर देते इंडियंस को इस इंसिडेंट की वजह से। और फिर उन्होंने एम्बुश कर दिया एक बार, एक 17 असम राइफल की बटालियन थी नॉर्थ सिक्किम में, एम्बुश कर दिया और 2 सिपाही मार दिए, और वो हमारी टेरिटरी में हुआ था, और उन्होंने बोला नहीं ये तो हमारे यहाँ रूट करके आ गए थे इसलिए हमने मार दिया। तो जन सगत को बहुत गुस्सा आया, मैं इसका बदला लूंगा कभी ना कभी।
उन्हीं दिनों चीन ने शिकायत की कि भारतीय सैनिक उनकी भेड़ों के समूह को अपने क्षेत्र में हांक कर ले गए हैं। उस समय विपक्ष की एक पार्टी भारतीय जनसंघ ने इसका अजीबोगरीब ढंग से विरोध किया। 43 वर्षीय सांसद अटल बिहारी वाजपेयी, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने, चीन के शांतिपथ स्थित दूतावास में भेड़ों के एक झुंड को लेकर घुस गए। 1967 में ही भारत चीन सीमा पर भारतीय सैनिकों द्वारा तार की बाड़ लगाने का चीनी सैनिकों ने जोरदार विरोध किया। उस समय कैप्टन के रूप में नाथुला में तैनात और बाद में मेजर जनरल बनकर रिटायर हुए शेरू थपलियाल इंडियन डिफेंस रिव्यू के 14 सितंबर 2014 के अंक में लिखते हैं।
नाथुला में दोनों सेनाओं का दिन कथित सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था और इस दौरान दोनों तरफ के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तू तू में शुरू हो जाती थी। चीन की तरफ से सिर्फ इनका राजनीतिक कमिसार ही टूटी फूटी अंग्रेजी बोल सकता था। उसकी पहचान थी कि उसकी टोपी पर एक लाल कपड़ा लगा रहता था। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से मात्र 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते थे। वहां पर एक नेहरू स्टोन हुआ करता था। ये वही जगह थी जहां से होकर जवाहरलाल नेहरू 1958 में ट्रैक करते हुए भूटान में दाखिल हुए थे। थोड़े दिनों बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई और 6 सितंबर 1967 को भारतीय सैनिकों ने चीन के राजनीतिक कमिसार को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे उसका चश्मा टूट गया।
इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय सैनिक अधिकारियों ने तय किया कि वो नाथुला से सेबुला तक सीमा को डिमार्केट करने के लिए तार की एक बाड़ लगाएंगे। मेजर जनरल रणधीर सिंह, जिन्होंने जनरल सगत सिंह की जीवनी लिखी है ए टैलेंट फॉर वॉर, बताते हैं।
जैसे ही ये शुरू करा चाइनीज ने ऑब्जेक्ट करा, पहले दिन तो कोई खास ऐसा कुछ हुआ नहीं, मौसम भी थोड़ा खराब हो गया, फेंसिंग थोड़ी कम लगी, खाली टेस्ट कर रहे थे हम लोग। अगले दिन जन साहब खुद आए और उन्होंने बोला कि चलो अब ले करना शुरू करो और फेंसिंग शुरू हो जाए। फेंसिंग तो शुरू करने लगे तो चाइनीज फिर आकर हल्ला करा उन्होंने कि आप ये फेंसिंग नहीं लगा सकते, हमारे जवान लगाते रहे। और उन दिनों में आपको मालूम होना चाहिए कि बेनेट टू बेनेट कन्फ्रंटेशन हो रहा था, तो ये नाथुला इंसिडेंट के पहले की बात है। प्रेपरेशन में ये हो रहा था कि चाइनीज ऑब्जेक्ट कर रहे थे और हम लोग सामान ले जा रहे थे, वाटरशेड के ऊपर हरकत शुरू हो गई थी हमारी, तो उसके लिए ये सब हो रहा था। और जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो कर्नल राय सिंह थे 5 ग्रेनेडियर्स के, उनको तो हुक्म मिल गया था, उन्होंने डिसाइड करा चाहे कुछ भी हो मैं तो फेंस ले करूंगा। जब चाइनीज ने ऑब्जेक्शन हमारे लोगों ने सुनी नहीं तो चाइनीज ने अपने ट्रेंचेस में घुस गए और ऑटोमेटिक हथियार फायर करने लगे, जिससे हमारे बहुत ही ज्यादा कैजुअल्टी। क्योंकि हमारे सब सैनिक जो थे बाहर थे, उस दौरान क्या हुआ कि दो ऑफिसर जो थे, एक राजपूत का और एक ग्रेनेडियर्स का, इन दोनों ने बेबस होके जितने भी आदमी थे इकट्ठे करे और उनके ऊपर धावा बोला, धावे के दौरान वो सब मारे गए। पर उस टाइम पर चाइनीज ने फायरिंग बंद कर और हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे, पर हमारा ऑक्यूपेशन जो था वाटरशेड के ऊपर फिर वो कायम रहेगा। हाँ, पर याद रखें कि जनरल सगर सिंह जी ने उस दौरान जब देखा कि ये हालत हो रही है तो उन्होंने आर्टिलरी फायरिंग की हुक्म दे दी। आर्टिलरी फायरिंग खाली प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर कर सकते थे, उन दिनों में चीफ के ऊपर भी एक वो नहीं था, पर जब कोई और ऊपर से कोई हुक्म आया नहीं तो क्योंकि इमरजेंसी थी तो उनके ऑर्डर्स के ऊपर आर्टिलरी फायर शुरू हो गया और चाइनीज को बहुत ही नुकसान हुआ यातुंग वैली में, पर हमारे भी कैजुअल्टीज हुई, उनकी भी हुई।
उस समय सिक्किम में ये एक्शन देख रहे मेजर जनरल वी के सिंह इस लड़ाई का और विस्तृत वर्णन करते हैं।
उसके बाद तो साहब फुल स्केल लड़ाई हो गई जो 3 दिन तक चली, गोलीबारी होती रही। तो जनरल सगत ने फिर क्या किया कि ऐसा नहीं चलेगा, मीडियम आर्टिलरी रिक्विजिशन की, नीचे से आई ऊपर मीडियम गन्स और उससे फिर उन्होंने फायरिंग शुरू की। अच्छा, क्योंकि हमने पहले ही ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑक्यूपाई कर रखी थी जहां से कि चाइना का काफी एरिया नजर आता था, जो मीडियम गन्स की फायरिंग थी उससे चाइनीज कैजुअल्टी बहुत हुई। जबकि उनके गोले जो हमारे यहाँ गिरते थे वो एट रैंडम फायर करते थे, उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि कहाँ मार रहे हैं। हमारी जो ओपी थी ऑब्जर्वेशन पोस्ट नथुला के साउथ में और नॉर्थ में, उन्होंने बहुत अच्छा फायर गिराया उसके बाद। तो उसके बाद फिर जब सीज फायर हुआ तो चाइनीज ने कहा कि भाई आप लोगों ने अटैक किया है, और एक तरह से उनकी बात सही थी, हमारी सारी बॉडीज चाइना में पाई गई क्योंकि हमने हमला किया था। चाइनीज तो हमारी तरफ कोई आया नहीं था, उन्होंने बोला आपके पास हमारी एक भी बॉडी है तो नहीं है, तो फिर किसने हमला किया, आपने किया। इस बात पे काफ़ी मीडिया कवरेज हुई, वो हुआ कि भाई इंडिया ने अटैक कर दिया है, तो लोग बहुत नाखुश हुए सुपीरियर्स जो थे कि भाई आपने ये खाम खां की लड़ाई कर दी और कोई हमारी 200 कैजुअल्टीज हो गई हैं, करीब 65 लोग तो मारे गए जान गए, 145 के कभी इंजर्ड थे, चाइना की करीब 300 कैजुअल्टीज हुई थी।
भारतीय सेना के इस करारे जवाब को सेना के उच्च अधिकारियों ने पसंद नहीं किया और लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का वहां से तबादला कर दिया गया। लेकिन इस झड़प ने भारतीय सैनिकों को बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा पहुंचाया।
एक खास बात नोट करने की है कि 62 वॉर के बाद पूरी इंडियन आर्मी में जो एक तरह से चाइनीज की दहशत हो गई थी कि ये चाइनीज तो सुपरमैन है, हम इनके मुकाबले कुछ नहीं कर सकते, वो जो थी वो टूट गई। हिंदुस्तान का जवान था उसको पता लग गया कि हम भी चाइनीज को मार सकते हैं और मारा। तभी तो कहते हैं ये पहली बार था वी गेव द चाइनीज अ ब्लडी नोज।
रेहान फजल, बीबीसी, दिल्ली।
स्वामी जी देवेंद्र ने हमारे फेसबुक लाइव पर कमेंट करके हमें बताया है कि उन्हें ये विवेचना अच्छी लगी। आपको कैसी लगी हमें लिखिएगा जरूर। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। जापान की ओर दोबारा मिसाइल छोड़ने पर उठे विवाद के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया की कड़ी निंदा की है। इराक के स्वायत्त शासी कुर्दिश इलाके की संसद में इराक से अलग होने के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रस्ताव पास किया गया है। लंदन के ट्यूब ट्रेन में बम विस्फोट के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने देश में चरमपंथी हमलों के खतरे को उच्च स्तर का घोषित किया है। स्पेन के प्रधानमंत्री मेरियानो राजियो ने बार्सिलोना में अपने पार्टी समर्थकों से कहा है कि अलग होने के मसले पर कैटलोनिया में जनमत संग्रह नहीं कराया जाएगा। नाइजीरिया की सेना ने अलगाववादी संगठन इंडिजिनस प्यूपल ऑफ बायफ्रा को चरमपंथी संगठन घोषित कर दिया है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार भारत की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिनभर में होगी। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाला अजीत सारथी ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया विकास त्रिवेदी ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत, बीबीसी हिंदी का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार।